आली अकमालिया का एक रोजा इज्तिमा मुनाकिद हो रहा है जिसकी ये पहली मजलिस है। मर्द और ख्वातीन दोनों ही को इस इज्तिमा से इस्तिफादे का मौका मस्जिद के इंतजामिया ने दिया है। ख्वातीन मदरसे मुआज़्ज़म शाही हाई स्कूल में तशरीफ लाए और मर्द अहबाब मस्जिद वाहिद खातून में आज का यह इज्तिमा दीनी और इस्लाही और तरबियती लेन का इज्तिमा है जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज कुरान और हदीस फिक्र व तसव्वुफ और तमाम ही अहम तरीन उनवानात दीन के तहत हजरात उलमाए किराम और मशायख इज़ाम के खिताबात होंगे। हमारे लिए ये बड़ी सआदतमंदी की बात होगी कि हम दीन और इस्लाह की बात सुनने के लिए जमा हों, खुसूसन ऐसे मौके पर जबकि अपनी बस्ती में इज्तिमा हो रहा हो और अपने लिए जिसमें हर तरह की सहूलत हो, छुट्टी का दिन हो, तो ऐसे मौके पर बड़ी कदरदानी का मुजाहरा होना चाहिए। सभी से ही गुजारिश है कि वो कसीर तादाद में तशरीफ लाएं और इस इज्तिमा से भरपूर फायदा उठाएं। कुरान और सुन्नत के तहत दीन की बातें बहुत ही वजाहत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने आएंगी। ये हमारी ऐन जरूरत है जिसके जरिए से हमारी दुनिया भी सुकून के साथ गुजरेगी और आखिरत में नजात, कामयाबी, सुरखरुई, सरबुलंदी, तमाम चीजें इन्हीं उलूम और उनकी जिंदगी में लाने पर मौकूफ है। तो बहरहाल ये एक अच्छा मौका है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस इज्तिमा में मुख्तलिफ नशिस्तों में हज़रत शाह सूफी गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा जानशीन उलमा हज़रात वगैरह खिताब करेंगे। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद कमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम जानशीन सिलसिला और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ुर रहमान साहब और ऐसे ही हज़रत के दीगर साहबजादगान और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जावीद वगैरह इस इज्तिमा से खिताब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली नशिस्त का आगाज हो चुका है। इस वक्त में कुछ इब्तदाई और ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार की जा रही हैं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बड़ा फजल फरमाया कि जिंदगी के कुछ लम्हात अपने करम से मजीद अता फरमाए और एक मौका दिया दीन की बात के सुनने का, समझने का, قرآن و سنت کے مضامین کو سننے کا، اپنی زندگی کیسے سدھاری جائے اس پر غور و فکر کرنے کا ایک موقع اللہ نے دیا. اس پر جس قدر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. مجھے اس موقع پر ابتدائی مجلس ہونے کی حیثیت سے کچھ انتہائی اہم اور بنیادی باتیں آپ کو سنانی ہیں. جتنے سننے والے ہیں اگر وہ بھی سمجھ لیں تو اجتماع کامیاب. ہمارے بعض بزرگ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مریدین کی بھیڑ نہیں چاہیے، ایک دے کام کر دے. یہ دعا کرتے تھے تو دو ایک ہوں، آٹھ دس ہوں، لیکن ہوں کام کے تو سو دو سو، ہزار دو ہزار پر بھاری. پھر یہ جو نعمت ہے جس عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں، یہ عام طور پر چونکہ انتہائی قیمتی چیز ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. عجیب و غریب قاعدہ ہے، جو چیز اتنی قیمتی ہوتی ہے وہ اتنے کم افراد کے پاس ہوتی ہے. تو آج کی اس مجلس میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو سنانی ہیں، اور چونکہ میدان میں فی الوقت ایک ہی شخص موجود ہے تو اس کی بنا پر شاید آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر تک بھی اسے رہنے کا موقع ملے گا. تو کچھ بنیادی باتیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، اسلام کے جو احکام ہیں ان میں دو طرح کی گویا قسمیں ہیں. ایک تو وہ احکام ہیں جو ہمارے جسمانی اعمال کی حیثیت سے دکھائی دیتے ہیں، جیسے نماز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. تو شریعت کے جو احکام ہیں اور شریعت کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا وہ جزء جو ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اس کو اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو دکھائی دیتا ہے ظاہر سے اس کا تعلق ہے، زکات ادا کرتا ہے تو دکھائی دیتا ہے ظاہر سے اس کا تعلق ہے، حج کرتا ہے دکھائی دیتا ہے ظاہر سے اس کا تعلق ہے، سحر افطار کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب روزے دار تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل بھی ظاہر سے تعلق رکھنے والا ہے. ایک رات میں تلاوت کرتے بیٹھا ہے، نوافل میں مشغول ہے، صدقات خیرات میں لگا ہوا ہے، نیکی بھلائی کی بات بتلا رہا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جن کا ظاہر سے تعلق ہے. ان کو فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے وہ عمل لیکن دکھتے نہیں باہر، سر کی آنکھیں ان کا ادراک نہیں کرتی، آدمی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا. جیسے کسی بھی عمل میں صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، کیا جذبہ، دل میں کیسا جذبہ ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتے، کیا نیت ہے، अमल तो हो रहा है लेकिन उस अमल का ताल्लुक दिल से है। या तो वही शख्स जानता है जो वो अमल कर रहा है कि क्या नियत है, या वो जानता है जो दिल का पैदा करने वाला है, दूसरे को मालूम नहीं। तो ये जो अमल है इसका ताल्लुक बातिन से है। एक आदमी पर कोई मुसीबत आई तब उस मुसीबत पर दिल में अल्लाह के ताल्लुक से शिकवा शिकायत नहीं होना, आने वाली मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझना और उसमें अज्र मिलने का यकीन करना, ये दिल का अमल है। अल्लाह के बारे में दिल में शिकायत नहीं रहना मुसीबत आने की वजह से। जबान खोले तब तो मालूम ही हो जाता बेसब्रा है, बोलते नहीं भी खोला मुझे दिल में सोच लेता रहा कोई और नहीं मिले होंगे, एक मई मिला मुसीबतों के वास्ते। तो जब दिल में ये जज्बात पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सब्र नहीं है अंदर। तो सब्र वाला जो अमल है वो अंदरून का अमल है, बैरून का नहीं। शुक्र है अंदर पाया जाता है, कदरदानी ये जज्बात अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही तकब्बुर का होना, अंदर बड़ाई का जज्बा है या नहीं है, या तो उसको मालूम रहना या फिर हफ्ता अलग। बड़ाई का जज्बा किसमें है किसमें नहीं है बोल सकते अपन, देख के किसमें नहीं बोल सकते। तो जाहिर है कि ये भी अहकाम है ना। तो जो आमाल ऐसे हो कि जिनका ताल्लुक बातिन से हो और वो अज्जाए शरीयत, वो आमाल शरईया जिनका ताल्लुक बातिन से हो, ये है तसव्वुफ। किसी और चीज का नाम नहीं है, शरीयत ही के जुज्बे बातिन का नाम है। शरई आमाल के दो अज्जा हुए, एक वो आमाल है जो जाहिर से ताल्लुक रखते उसको फिका बोलते, और एक वो आमाल है जिनका ताल्लुक बातिन से है उसे तसव्वुफ बोलते है। शरीयत ही, शरीयत से हटकर कुछ नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के जमाने तक तो फिका बोलते ही थे इन दोनों अज्जा को, आमाल जाहिरा को भी आमाल बातिना को, दोनों के मजमूए को फिका बोलते थे। चुनाचे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फिका की तारीफ ये लिखी है, मारिफतुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा। नफ्स की इस हैसियत से वाकिफियत कि क्या चीजें उसके लिए फायदा बख्श हैं और क्या चीजें उसके लिए नुकसान दें, इसका नाम है फिका। आदमी का जान लेना कि अपनी जात के लिए क्या चीजें नफा बख्श हैं क्या चीजें नुकसान दें। जाहिर है कि इसमें तो पूरी चीजें आ गई। तो तसव्वुफ किसे कहते हैं, गोया उस वक्त से अब तक ये बात बताई जा रही है कि इस चीज का नाम है। जहां तक हुक्म का ताल्लुक है उस हुक्म के मालूम होने से अहमियत और जरूरत भी समझ में आ जाएगी। हक ताला जल्ले शानहु ने जगह जगह इरशाद फरमाया, अकीमुस सला नमाज कायम करो, आतु जका जकात अदा करो, कुलू व शरबू, खाओ और पियो। फिर काओ मार राख्या इन, नमाज अदा करने वालों के साथ नमाज अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। जैसे ये हुक्म है और इसमें आर्डर है, हुक्म है, अम्र है, लाजिमी चीज है ये जो अल्लाह की जानिब से बंदों के ऊपर नाफिज की गई। ऐसे ही परवरदिगार आलम ने वो अहकाम भी दिए हैं जिनका ताल्लुक बातिन से है। मसलन कुरान पाक में हम ताला जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्बिरू, ईमान वालों सब्र करो। अकीमों का जो सिगा है, अकीमों के जो कलिमात हैं और उसमें जैसा हुक्म पाया जाता है, इस बिरू में भी वैसा ही हुक्म पाया जाता है, वही हुक्म है उसका। तो मालूम यह हुआ कि जैसे नमाज फर्ज है ऐसे सब्र भी फर्ज है। अब एक फर्ज अदा करे और दूसरा फर्ज अदा न करे, जाहिर है कि परवरदिगार नहीं। एक आदमी वो है जिसे दो बीमारियां लायक हो गई। अब दो बीमारियों में से एक बीमारी गई, सेहतमंद हो गया क्या? नहीं हुआ। चक्कर भी जोर से आ रही, पेट में भी दर्द हो रहा। फर्ज कीजिए कि चक्कर खत्म हो गई और पेट का दर्द वैसी बात नहीं, लौट रहा, सेहतमंद हो गया। दो बीमारियां हैं तो दोनों बीमारियां गए तो सेहतमंद है ना। दो हुक्म पूरा किया तो दीनदार, एक पूरा करेगा एक पूरा नहीं करेगा तो दीन उसके पास कहां का है। तो जैसे नमाज का हुक्म वैसे ही सब्र का हुक्म, और जैसे ज़कात का हुक्म वैसे ही शुक्र का हुक्म। आत ज़का फरमाया तो उश्कुरू लहू, अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। तो ये भी हुक्म वैसे ही मौजूद है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं, आकाम का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। बहुत से आमाल का हुक्म देते हुए परवरदिगार आलम ने हर अमल में एक अंदरूनी हुक्म को दिया। जो फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत कैसी करना, ऐसी करना है कि उसमें सिर्फ अल्लाह को राजी करने का की नियत। अल्लाह को राजी करने के लिए अपने अमाल में अखलास पैदा करो। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह ही को राजी करने के वास्ते नमाज पढ़ो, अल्लाह ही को राजी करने के वास्ते कुर्बानी करो। लिल्लाही अलन्नासि हज्जुल बैत, हज बैतुल्लाह लोगों के जिम्मे फर्ज किया गया है अल्लाह को राजी करने की नीयत से। हर जगह हुक्म है लिल्लाह, तो ये इखलास जो है ये बातिनी अमल है और इसका सरी हुक्म मौजूद है। तो जैसे आमाल जाहिरा है ऐसे ही आमाल बातिना है, जैसे जैसे अहकाम जाहिरा है ऐसे ही अहकाम बातिना है। जैसे वो फर्ज है ऐसे ये भी फर्ज है, और जैसे जाहिर में कुछ चीजें हराम है बातिन में भी हराम है। शराब पीना हराम है ना, हराम है। दिखावे का काम करना ये भी हराम है। यानी किसी अमल को करते हुए फलाना देखना, फलाना देख के खुश होना, میں یہ کرتا ہوا اگر فلانا دیکھ لیا تو پھر میری عزت اس کے پاس ہوں گی. یہ اگر اندر ہے تو اندر شراب پی لیا سمجھو. تو جیسے ظاہر میں شراب حرام ہے, باطن میں ریا حرام ہے. ان سے بچنا ضروری ہے. جیسے جھوٹ غیبت یہ جائز نہیں ہے, ایسے ہی عجب و خود پسندی بھی جائز نہیں ہے. اور جیسے ظاہر ہے بعض بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, ایسے اندر میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. ان میں سب سے بڑا جو گناہ ہے اندرون کا جی, وہ عقیدے کی خرابی اور کبر کا ہونا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. تو اب یہ احکام سے کو جاننا اور ان بیماریوں سے واقف ہونا اور اس کے علاج و معالجے کی ضرورت کو سمجھنا اور پھر اس کا علاج معالجہ کرانا اور اس کے لیے جو دوائیں تجویز کی جائیں ان دواؤں کو استعمال کرنا اور جو پرہیز کا حکم دیا جائے ان چیزوں سے پرہیز کرنا, اگر اس کا اہتمام ہوگا تب کہیں جا کر اس سے چھٹکارا ملے گا. تو یہ مشائخ حقہ پیران طریقت مرشدین عظام علماء ربانی جو خانقاہیں بنایا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کو کی اصلاح و تربیت میں مشغول رہتے تھے, وہاں دراصل یہی کام ہوتا تھا. اور یہ ہماری ضرورت ہے. بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو اندرون کے احکام ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ظاہری احکام کے بمقابل. اس واسطے کہ اعمال ظاہرہ پورے کے پورے اس وقت میں قابل قبول ہیں جبکہ باطن آدمی کا صحیح ہو. ایک پیالی کوئی چیز ہو لیکن معلوم ہے کہ یہ صاف ستھری ہے, قبول کر لے گا. ایک لوٹا کوئی چیز ہے لیکن اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر کچھ ڈالا گیا, قبول نہیں کرے گا اسے. اس لیے کہ اندرون میں خرابی آ گئی اس کی. تو یہ جو جزو باطن سے تعلق رکھنے والی شریعت ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. اسی کی تعلیم, اسی کی تربیت کے سلسلے میں دراصل مشائخ حقہ خانقاہوں کا نظام قائم کیے ہوئے تھے. موجودہ زمانے میں چونکہ وہ نظام کما حقہ باقی نہیں رہا, اسی لیے اب دیگر طریقوں سے اسلام و تربیت کا کام علماء اور مصلحین امت انجام دیتے جا رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک کہ آدمی کا تعلق کسی بزرگ سے صحیح نہ ہو اور باقاعدہ اس سے اپنا اصلاحی ربط و تعلق قائم نہ کرے, اس کی پوری اصلاح بہت مشکل ہے. چند چھوٹے موٹے احوال کو کر کے وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو ہو گیا دیندار. حالانکہ ایسا نہیں. تو دونوں احکام کی تفصیل کو جاننا ضروری ہے. قرآن پاک میں اور احادیث میں دونوں قسم کے احکام مذکور ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے وہ لکھا ہے کہ دیکھو, جیسے للہ علی الناس حج البیت کے ذریعے سے حج بیت اللہ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے, کتب علیکم الصیام سے روزے کی فرضیت معلوم ہوتی ہے, الذین آمنوا اشد حبا للہ سے اللہ کی محبت کا مقصود و مطلوب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے. تو جیسے وہ حکم ہے ایسے یہ بھی حکم ہے. गैर मामूली इनकी अहमियत है। इस अहमियत को समझते हुए अपनी जिंदगी में पूरा दीन लाने का एहतमाम करना, जब तक कि दोनों अज्जा मुकम्मल ना हो उस वक्त तक दीन आदमी का सही नहीं। पेशानी सही है, बाकी कोई चीज सही नहीं। हुसनदार है क्या? हुसनदार नहीं बोलेंगे उस जिसकी पेशानी तो ठीक है, बाकी कोई चीज ठीक नहीं। किसी की सिर्फ अबरू ठीक है, बाकी कोई चीज ठीक नहीं, तो वो भी हुसनदार नहीं। पूरे आधा सही हो वो है हसीन। ऐसे ही दीन के पूरे आधा आदमी के सही हो वो है साहिब दीन, दीनदार वो शख्स। हमारे हैदराबाद के भी एक बुजुर्ग ने मिसाल से यही बात समझाई है कि भाई एक आध उज्व का सही होना आदमी के हसीन होने को नहीं बतलाता। ऐसे ही दीन के अज्जा में से कोई एक आध जुज्व का जिंदगी में होना आदमी को दीनदार नहीं बनाता। तो पूरे दीन को अब जिंदगी में लाने के लिए ये एक तरीक है। इसीलिए कहते हैं कि तबलीग में तशवीक होती, शौक पैदा हो जाता, रहमत पैदा हो जाती, दीन की तलब आदमी के अंदर आती, प्यास पैदा हो जाती। और मदारिस में जो है वो तालीम होती है, और खानकाहों में तकमील होती है। इसे याद रखना, वह तीनों हमारी जरूरत है, तीनों हमारी जरूरत है। प्यास पैदा ना हो तब भी काम नहीं मिले, पानी न मिले तब भी काम नहीं मिले, पानी न पिया जाए तब भी काम नहीं बनेगा। तो एक जगह प्यास पैदा की जाती है, एक जगह पानी फराहम किया जाता है, एक जगह पिलाया जाता है, वह तीन जगहों पे तीन काम होते हैं। इसलिए तीनों हमारी जरूरत है, किसी जरूरत से इनकार नहीं कर सकते। और जहां तक आखिरी चीज का ताल्लुक है उसकी जरूरत खुद ही वाजे हो जाती है। आदमी के अंदर प्यास पैदा हो गई, आदमी के पास पानी मौजूद है लेकिन पीता ही नहीं, तो पीना कितना जरूरी है उसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। तो रब्बानी खानकाहों में यही होता है, यहां बाकायदा तरबियत होती है और एक एक अमल पर उसे चलाया जाता है। इसलिए इसकी अहमियत को समझें, बहुत जरूरी है। रूह है समझ लीजिए दीन की, ये है तो जानदार है आदमी, वरना फिर बेजान। और ये सबको मालूम है कि बेजान चीज की कोई कीमत नहीं, जानदार चीज की कीमत है। अंदरून जिस शय का अच्छा है उसकी कीमत है, अंदरून जिस शय का अच्छा नहीं उसकी कोई कीमत नहीं। सूरत चाहे कैसी हो लेकिन अंदर अच्छा है अगर ये मालूम हो तो उस चीज की कीमत है। वो आजकल अनार आ रहा है, बेदाना अनार, ऊपर से सूखा हुआ दिखता हो, पिचका हुआ चारों तरफ से, सूखा हुआ ऊपर से, लेकिन दुकान वाला बोलता तुम ले जाओ साहब इसे, ले जाके देखो इसे। एक आध दफा लाके देखने के बाद में आदमी बेतकल्लुफ ले लेके आ जाता। उसके बरखिलाफ आजकल सेब निकल रहे थे, ऊपर से एकदम सुर्ख चमकदार भरे हुए मालूम होते, आदमी देखे तो उसका जी लल जाता। वहां से लेके आए और लाके काटे तो अंदर का पूरा मग काला हो गया, देखे नहीं देखे। मैं देखूं बोल के बोल रहा हूं, ऊपर से बिल्कुल अच्छे और अंदर से मैं पूरा सियाह हो जाऊं। कोसे जमाने में लाके फ्रिज में रख दिए थे तो अंदर से खराब हो गया, ऊपर से सूरत अच्छी है उसकी। तो सूरत की कोई वो नहीं है, सीरत की है अहमियत। सूरत हमारी इख्तियार की चीज नहीं है ना, सूरत हमारे इख्तियार की चीज नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि आप गोरे हैं तो अपने इख्तियार से और मैं काला हूं तो अपने इख्तियार से, ऐसा तो नहीं। अल्लाह ताला ने जिसको ऐसा बना दिया वो ऐसा बना हुआ है बस। इस वास्ते काले गोरे पर कामयाबी नाकामी कुछ नहीं है, बल्कि कौन पर कहां पैदा हुआ इस एतबार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस्मानी साख के एतबार से कौन कैसा है इस पर कोई बुनियाद ही नहीं आदमी की कामयाबी नाकामी। इंसान के अख्तियार की चीज नहीं है। इसीलिए दो अल्फाज हैं अरबी के, एक खल्क और एक खुल्क। तो ये जो हमारी जिस्मानी साख है ये खल्क है जिसमें हमारा अख्तियार नहीं, और एक है खुल्क, इसको इसको ताल्लुक सीरत से। तो अल्लाह के पास कीमत जो है वो सूरत की नहीं है, सीरत की है। हदीस शरीफ में आता है इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों की तरफ नजर नहीं फरमाते कि सूरत का कैसा है, ये देखते हैं कि सीरत का कैसा है। इसीलिए जिन लोगों में दीनदारी ज्यादा होती है, हकीकी दीनदारी होती है, वो लोग बच्चों बच्चियों में भी सूरत की तरफ बाद में सीरत की तरफ पहले नजर डालते। लेकिन जिनके पास ये नजर नहीं वो सूरत की तरफ देखते, बस वो सीरत की तरफ नहीं देखते। सूरत की कोई अहमियत नहीं, कौन कैसा है वो तो अल्लाह ने जैसा बना दिया वैसा है। जन्नत में सिर्फ गोरा जाएगा, कहीं नहीं लिखा हो, और जितने सियाह हैं वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ। सूरत से कोई मसला ही नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जब तशरीफ ले गए तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरे सामने मेरे साथ साथ बिलाल चल रहे, ताकि आपको अजनबीयत महसूस न हो। ऐसा माहौल अल्लाह ने दिया, कितना बड़ा एजाज है। किसको है, सूरत वाले को है कि सीरत वाले को? सीरत थी वहां, सूरत के एतबार से कोई खास नहीं थी हजरत बिलाल, सीरत थी। तो कीमत तो अंदरून की है भाई, इसीलिए अंदर वाले को बनाना, अपने आमाले बातना को सही करना, आमाले जाहिरा की दुरुस्ती के साथ। शरीयत के दो जुज हैं, ये दूसरे जुज के हासिल करने के जो तरीके हैं उन तरीकों को तरीकत बोलते। शरीयत मुतहरा के बातनी जुज़ के हासिल करने के जो तरीक है उसको बोलते तरीकत। शरीयत अलग, तरीकत अलग नहीं, और जो बोला अलग है उन्हें जानते ही नहीं, ना शरीयत को जानता ना तरीकत को जानता, धोखा देता है लोगों को। दीन शरीयत हकीकत तरीकत जी, तमाम चीजें वो हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। कुरान नहीं जानते, हदीस नहीं जानते, हुजूर वाले अहकाम को नहीं जानते, हुजूर वाली जिंदगी को नहीं जानते। अब अपनी तरफ से कोई चीज घर के उसका नाम अगर हमने कुछ कुछ रख लिया हो जी, अपने नजदीक हो तो हो, हकीकत की दुनिया में उसका कोई मकाम नहीं। एक बच्चा अपने हाथों से टीन के टुकड़े मोड़ ओड़ कर मुख्तलिफ किस्म के उसे पीसेस बनाकर मेहनत कोशिश करके उसके जोड़ कर ये खुश रहे मुबतला हो जाए, मैंने हवाई जहाज तैयार कर दिया, तो उसकी निगाह में हवाई जहाज हो तो हो। हकीकत जानने वालों के पास उस पर उसको टीन के टुकड़े से बढ़कर उसकी कोई हैसियत नहीं। इसी तरीके से कुरान और सुन्नत को न जानने वाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी को पेश नजर न रखने वाला और कुरान और सुन्नत की रोशनी में राह जिंदगी को तय न करने वाला अपने तर्ज जिंदगी का जो चाहे नाम दे ले, उसके नजदीक हो तो हकायक से दुनिया में उसका ताल्लुक न तरीकत से है, न हकीकत से है, न मारिफत से है, किसी चीज से नहीं। तो शरीयत मुतहरा का वो जुज जिसका ताल्लुक बातिन से है वो तसव्वुफ कहलाता है, और शरीयत मुतहरा का वो जुज जिसका ताल्लुक जाहिर से है वो फिक्र कहलाता है, और फिक्र तसव्वुफ दोनों का जिंदगी में होना जरूरी है, और इन दोनों के हुसूल के वास्ते जरूरत पड़ती है अहले इल्म की सोहबतों की और मशायख हक्का के जेरे तरबियत रहने की। ये तो हुई तारीफ से मुतालिक बात। मौजू इसका क्या है, इसके मौजू के बारे में लिखा है कि इसका मौजू है तहजीब अखलाक। तसव्वुफ का मौजू क्या है, तहजीब अखलाक, अपने अखलाक को मुहज्जब बनाना। अखलाक बोले तो वही सीरत से मुतालिक चीजें, खुल्क से मुतालिक जो चीजें हैं उनको सही करना, इल्म आदमी का सही होना, कुव्वत इल्मिया में एतदाल आना, कुव्वत शहवत में एतदाल आना, कुव्वत गजब में एतदाल आना, कुव्वत अदल आदमी के अंदर पैदा होना, ये चार चीजें सही होना जरूरी। पूरे अमाल के सही होने के मदार इसके ऊपर अखलाकियात की दुनिया में ये चार कुव्वतें सही हुई तो फिर अखलाक हसाना आदमी के अंदर पैदा हो जाते, और अगर ये चार गड़बड़ा गई तो फिर अखलाकियात की दुनिया आदमी की तबाह होगी। कुव्वत इल्म का हासिल होना या उसके अंदर एतदाल के आने का क्या मतलब है उसे समझना, तीन सिफात पैदा होना आदमी में, अकवाल की दुनिया में सच और झूठ की तमीज आदमी के अंदर पैदा हो, बातों में सच्चाई और झूठ में तमीज कर सकना, इतना इल्म रहना, अकायद में हक और बातिल में तमीज आदमी के अंदर आना, और आमाल में अच्छे और बुरे अमल की तमीज आदमी के अंदर रहना। ये चीज जब आती ना तो समझ जाना चाहिए कि कुव्वत इल्मिया सही हो गई। ये काम की चीज है मगर है ठीक ही, इसे याद रखना, कितना इल्म आना, अकीदों में सही गलत हक और बातिल मालूम होना, बातों में सच और झूठ की तमीज होना, अमल में सही गलत अच्छा बुरा इसका इम्तियाज आदमी के अंदर पैदा हो जाए। ये तीनों चीजें खत्म है अपने पास से, इसीलिए इन अखलाकियात में एतदाल के पैदा करने की एक मेहनत है जिसके जरिए से आदमी का जाहिर और आदमी के बातिन दोनों दुरुस्त होते हैं। उसी निजाम तालीम और तरबियत का नाम दरअसल बुजुर्गों से इस्लाही رب تو تعلق کا قائم کرنا ہے, اس کے بغیر عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی آدمی کی. تو اپنے باطن کو صحیح کرنے, اپنے اخلاق کو درست کرنے, اپنے دین کو کامل کرنے, اپنے آخرت کے بنانے کے لیے وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے پورا دین مکمل میری زندگی میں آئے, اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی عالم ربانی سے اپنا تعلق اصلاحی قائم کرنا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا, یعنی اس کی تعلیم و تربیت پر آدمی کا چلتے رہنا, اس سے کوئی عہد و معاہدہ ہونا. بیعت بولے تو کیا بک جانا, یہاں سب تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ ہے بہرحال جو حضرت کے ہاتھوں بیعت ہوئے تھے. لیکن موجودہ زمانے میں جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ان میں سے یہ بیعت کی دنیا میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی. کیا خرابی آئی؟ بیعت ہونے کا ایک تو مقصد ہی غلط ہو گیا لوگوں میں, جو مقصد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, کوئی دوسرا مقصد ہو گیا. فاسد مقاصد دنیاوی اغراض اس کے اندر آ گئے. ارے بھائی حالات سنبھل رہے نہیں, کیا کرنا, جا کے ان کے تو ہی مرید ہو جانا, ہو سکتا ہے ان کے مرید ہو جانے کی برکت سے حالات صحیح ہو گئے تو صحیح ہو گئے. اب حالات گھر کے صحیح ہونے, جھگڑا ٹنٹا پنچایت ختم ہونے, یا یہ کہ کاروبار جمنے, یا بیماریاں جانے, یا مصیبتیں ہٹنے, یا پریشانیوں کے دور ہونے کے بعد سے بیعت ہونا شروع. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی غرض ہی سے یہ عمل ہوا, حالانکہ یہ کوئی مقصد نہیں. یعنی بزرگوں کے پاس گئے بھی تو دنیا کے واسطے ہی گئے, یہ مطلب ہو گیا بس. اس سے زیادہ نقصان کی بات, ناقدری کی بات, بے احترامی کی بات, بے اکرامی کی بات کیا ہو سکتی. اور ایسا کئی کو ہو رہا معلوم ہے, ایسا اس واسطے بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں کہ جو غلط مشائخ ہیں ان لوگوں کی کا رجحان بھی دراصل دنیا کی ہی طرف ہے, اس کے نتیجے میں یہ اثر ہو رہا. سنا ہے کہ ایک مرید کو ایک دن خواب پڑا کہ وہ گندگی میں ڈوبا ہوا ہے, سامنے پیر بھی ہیں اور ان کی انگلیاں شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں, اس کی انگلیاں گندگی میں. یہ خواب دیکھ کر اس کا یہ ابتدائی حصہ ہے, پورا خواب دیکھنے کے بعد صبح میں وہ پہنچا شیخ کے پاس, کہنے لگا کہ حضرت رات میں خواب پڑا. میں نے کیا خواب پڑا؟ صاحب خواب یہ پڑا کہ میری انگلیاں غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہیں اور آپ کی شہد میں. تو خوش ہو گئے, کہنے لگے صاحب ایسا تو ہونا ہی چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب ابھی خواب پورا نہیں ہوا. مجھے پھر کیا ہوا؟ تو ہوا یہ کہ آپ کی انگلیاں تو میں چاٹ رہا ہوں لیکن میری انگلیاں آپ چاٹ رہے. تو ناراض ہو گئے, اسے بھگا دیا. یعنی کیا مطلب ہے؟ آنے والے کی نیت میں تو سچی طلب اور اچھائی کے جذبے کا اظہار ہے, لیکن جس کے پاس پہنچے اس کی نگاہ بھی مخلوق کی طرف, دنیا کی طرف, چیزوں کی طرف, فانی چیزوں کی طرف, اغراض نفسانیہ کی طرف ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ جو نظام بگڑ رہا ہے شاید اس کی وجوہات میں سے یہ بھی سبب ہو سکتا ہے. بہرحال ہم لوگوں کو یہاں جو چیز پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنے کے مقاصد میں دنیاوی کوئی چیز بطور غرض کے شامل نہیں رہنا کہ صاحب یہ کام بن جائے گا, وہ کام ہو جائے گا, بیماری چلی جائے گی, مصیبت ہٹ جائیں گی, روزگار مل جائے گا, بچے فرما بردار ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. کہیں کو بولنا پڑ رہا ہے؟ اس واسطے بولنا پڑ رہا ہے کہ تعلق قائم کرنے کے بعد میں جو کام کرنا چاہیے, جیسی مشغولیت چاہیے, वो है ही नहीं बिल्कुल, और तो बैठ हुए चले गए कदम किस्सा, मुरीद हुए चले गए, बरसा बरस हो गए, ना आना है ना जाना है, ना पूछना है ना पूछाना है जी, ना दरियाफ्त करना है, ना हालात से आगाह कराना है। तो इससे नहीं होती इस्लाह और तरबियत, इस्लाह के लिए ताल्लुक कायम करना जरूरी, और ताल्लुक अल्लाह के लिए और कायम करने से पहले देख लेना जिससे ताल्लुक कायम कर रहे हैं वो कैसा है, ताल्लुक कायम करने के लायक है कि नहीं है, उसको देखने के लिए कई एक चीजें देखो। उनमें से एक चीज ये देखो कि जरूरत के बकदर इल्म उसके पास है या नहीं, जितना इल्म की जरूरी है उस कदर इल्म उसके पास है या नहीं वो देखना। मुझे एक साहब ने बयान किया कि साहब मैं भी पीर हूं, मेरे को फलाने साहब ने खिलाफत दी। मैंने कहा कि भाई आपको क्या मिला फलाने से, बोले वो मैं तो नहीं मालूम, बोले उन्होंने क्या कि बन मुट्ठी दे दिया मैं ले लिया, उन्होंने यूं दिए मैं यूं ले लिया, बस मुझे नहीं मालूम मुझे क्या मिला उन्होंने क्या दिए। तो उससे जरूरत बकदरे जरूरत इल्म ही नहीं है उसके पास, ऐसा ना हो बकदरे जरूरत इल्म रहना, या तो बाकायदा पढ़ा हुआ हो या उलमा की बुजुर्गों की मजलिसों में बैठ बैठ कर इल्म हासिल किया हो, या किताबों को पढ़ने के जरिए से जरूरी इल्म उसके पास मौजूद हो, मगर होना चाहिए जरूरी इल्म। उसके पास बैठने से आखिरत की रगबत आना जिंदगी में, अल्लाह की मोहब्बत आखिरत की रगबत पैदा हो, वो देखना उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शरीयत के मुआफिक रहना, यानी गुनाह कबीरा से बचना।